فرصت کے لمحات ہیں نعمت خدا کی جان لو، کر لو ان میں نیکیاں جنت کا یوں سامان لو۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ مدنی چند کے ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں حدیث پاک سے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے تین تین بار درود پاک پڑھا ہوگا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدیشن کے ناظرین، پروگرام فرصت کے لمحات میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس پروگرام میں کسی ایک موضوع کے تحت سوالات ہمارے اور جوابات آپ کے شامل کیے جاتے ہیں۔ آج جس موضوع کو لے کر ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں، اس کا نام ہے فرصت کے لمحات میں حقوق العباد کی ادائیگی۔
سآتی ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون۔
تو رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو، یہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور انہی کا کام بنا۔
جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، ہر مسلمان پر بالغ ہوتے ہی حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد لازم ہو جاتے ہیں۔ جس شخص کا میل جول جتنے لوگوں سے زیادہ ہوگا، اس کا تعلق اتنا ہی حقوق العباد سے جڑا ہوا ہے۔ اگر وہ گھر کے سربراہ ہے تو اپنی بیوی اور بچوں کے حقوق کی ادائیگی اس پر لازم ہے۔ اگر وہ خاندان کا سربراہ ہے تو خاندان میں جتنے بھی افراد ہیں، ان سب کے حقوق اس کے اوپر لازم ہیں۔ اور اگر کسی ادارے کا سربراہ ہے تو ادارے کے اندر جتنے بھی اس کے ماتحت ہیں، تو ان سب کے حقوق کا جواب دہ ہونا اس کو پڑے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہر حق والے کا حق ادا کرو، یعنی بندوں کے حقوق کا ادا کرنا بھی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ بندوں کے حقوق کی ادائیگی، ان کی حق تلفی اور حق تلفی کا ازالہ، یہ اور بہت کچھ انشاءاللہ عزوجل ہم آپ کے ساتھ مل کر آج کے اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ خیریت سے بھائی جان؟
جی الحمد للہ۔
آپ کا نام کیا ہے اور آپ کی عمر کتنی ہوگی اندازن؟
میرا نام عاشق حسین اتاری ہے، میں لاہور سے آیا ہوں اور میری عمر ہے تقریباً 43۔
آپ کا نام کیا ہے اور آپ کی عمر کتنی؟
میرا نام محمد ہاشم ہے اور 50 کے قریب عمر ہے۔
عمر آپ کی کافی گزر گئی ماشاء اللہ، آپ کی بھی کافی عمر ہے۔ آپ کی عمر کتنی ہے تقریباً؟
70 ابو،
یعنی 70 سال سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ پاک آپ کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آج یہ کرنا تھا کہ حقوق العباد جو ہے، اس کا آج کے دور میں پاس نہیں رکھا جا رہا۔ حقوق العباد جو ہے وہ تلف کیے جاتے ہیں، اس کی ادائیگی نہیں ہو رہی۔ عمر کا ایک حصہ گزار چکے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پہلے کے دور میں لوگ ایک دوسرے کا احساس کرتے تھے، بیاہ شادی ہو، غمی خوشی ہو، ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ چڑھ کر تعاون کرتے تھے، لیکن اب وہ چیز دیکھنے میں نہیں آ رہی۔ آپ کیا فرماتے ہیں اس کے متعلق؟
بات یہ ہے کہ ہمارا اپنا جو ذہن ہے نا، وہ بڑھ گیا ہے۔ ہم پہلے اپنے بزرگوں میں بیٹھتے تھے،
اللہ
سیکھتے تھے۔ میرے بھائی وغیرہ مجھ سے کہتے تھے کہ تم اتنے بڈھے بڈھے آدمی میں بیٹھتا ہے، میں کہتا ہوں اس سے ملتا ہے، مجھے وہ چیز ملتی ہے جو زندگی بھر نہیں مل سکتی۔ ایسی نصیحتیں ملتی ہیں، ایسی محبت ملتی ہے، ایسا خلوص ملتا ہے۔
یہ کب کی بات ہے؟ جب آپ
جوان تھے، بچپنا تھا ہمارا، تقریباً میں تھا 7 سے 8 سال کا، 9 سال کا۔
ہم ہماری آپ کی غلطی، پرورش میں دیکھ بھال نہیں کرنا، ان کو ساتھ نہیں دینا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں،
उनको वक्त ना देना,
वक्त ना देना।
यानी मेन प्रॉब्लम ये है चैनल के नाजी, जैसे कि अभी वक्त देने के हवाले से बात इन्होंने निशात फरमाई, सुबह बंदा ड्यूटी पे जाता है या कारोबार के लिए, रात को जब घर वापस आता है खाना खाता है उसके बाद चेंज करता है फिर दोस्तों में बाहर चला जाता है, तो बीवी बच्चों को वक्त ना देकर उनकी हकूक की हक तलफी करता है जिसकी वजह से हमें अदब अदाब के मामले में परेशानी का सामना करना पड़ता है।
पहले के दौर में लोग हकूकुल इबाद के हवाले से बहुत तामन करते थे, पता ही नहीं चलता था कि किस घर में फोतकी हो गई है, गमी आ गई है, तो अब हम इसको हम कुछ ना कुछ तामन करें और माशाल्लाह साथ साथ हर चीज़ हो जाती थी, और जिसके घर में मैयत हो जाती या गमी आ जाती उसे पता ही नहीं चलता था कि ये मामलात कहाँ से तय पाए हैं, कहाँ से हुए हैं, और माशाल्लाह हर चीज़ बर वक्त फुतकी का ऐलान हो गया, जनाजे का ऐलान हो गया, मामला सारे हल हो जाते थे। इस तरह खुशी के मौका पर भी किसी बेटी की शादी है, बेटे की शादी, तो माशाल्लाह मिलजुल कर हकूकुल इबाद के हवाले से माशाल्लाह तामन करते थे लोग, लेकिन अब ये इससे दूरी होती जा रही है, और इसकी वजह भी है कि लोग दीन से दूरी की वजह से लोग हकूक लिबास तल्ख करते चले जा रहे हैं।
जो नई नस्ल है ना उनमें इत्तेफाक भी नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, वो मोबाइल के चक्कर में जो है ना बहुत आगे निकल गया है, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, इसमें जो है ना बुजुर्गों की इज्जत भी नहीं है, माँ बाप की भी इज्जत नहीं है, ये चीज से जो है ना बहुत फर्क पड़ा है, बहुत फर्क पड़ा है।
मदीशन के नाज़रीन, मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जिसको जब जायदाद का हिस्सा तकसीम करने लगे तो भाई आपस में बैठ गए, एक भाई ने दूसरे को कहा कि सिस्टर का हिस्सा इतना बनता है, तो उसने कहा कि वो कैसे लेगी हमारा हिस्सा, क्योंकि हमने मिलकर उसकी शादी की है, बाप के इंतकाल के बाद तो सारी जिम्मेदारी हमारे पे आ गई, अब उसका हिस्सा निकल देनी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
असल में ये गलत सोच है, हाँ ये है ये बात कैसी, बस हमारा फर्ज सिर्फ शादी करना था, ऐसा नहीं है, बाप की जायदाद में बहन का, बेटी का, भाई का, माँ का सबका हिस्सा है, और इसमें जो है कोई तफरीक नहीं करनी चाहिए और उसको अदा करना चाहिए, और ये शादी कर देना तो फर्ज था माँ बाप का, माँ बाप नहीं रहे तो जारी बात है कोई बड़ा भाई करेगा, कोई मामू करेगा, कोई चाचा करेगा, तो वो तो अल्लाह ताला ने कोई जरिया बना ही देना है, लेकिन जायदाद से हक नहीं कर सकते आप, उनको बहनों को भी आपको देना पड़ेगा।
अच्छा, ये सुन के आप हैरान होंगे कि उन्होंने कहा कि अगर हमने हिस्सा दे दिया और उन्होंने ले लिया तो हमें मिलेगी किस मुँह से?
हाँ ऐसा होता है कि फिर वो जो है आपस में नाराज हो जाते हैं कि इन्होंने जायदाद में हिस्सा क्यों मांगा, और ऐसा अक्सर होता है, फिर बहन भाई जुदा हो जाते हैं सिर्फ इस बुनियाद पर कि इन्होंने जो है हिस्सा मांग लिया, जो कि जायज हिस्सा होता है, कोई नाजायज नहीं होता।
मेरी खुद की कोताही ये होती है कि मैं अगर जो औलाद को हराम खिलाऊंगा तो वो हराम का लुकमा वो असर दिखाएगा, अगर जो हलाल की कमाई होगी ना तो औलाद भी अच्छी उठेगी, अगर जो हराम की कोई चीज़ भी होगी, कोई एक रुपये भी मिला दोगे ना उसमें बच्चे सही नहीं उठेंगे, घर वाले भी सही नहीं कदर करेंगे, इज्जत नहीं होगी, अगर चाहे आप जितना कोशिश करें हलाल की कमा के खिलाएं इंशाल्लाह ताला घर में बरकत भी होगी और अल्लाह की रहमत भी होगी, औलाद भी अच्छी उठेगी।
घर वालों के भी कुछ हकूक हैं, अक्सर देखने में आता है कि ऐसा नहीं होता कि घर वालों को कंपनी दी जाए, आप क्या कहेंगे इसके बारे में?
बाद लोग जब काम से वापस आते हैं या किसी भी कारोबार से दुकान बंद करके या बिजनेस करके या नौकरी से वापस आते हैं तो फिर बाहर दोस्तों से उठकर फिर घर पे आते हैं तो घर वालों को टाइम नहीं देते, ना जौजा को, ना अपने बच्चों को, ना उनसे गुफ्तगू करते हैं, ना दीनी वाले से गुफ्तगू करते हैं कि आज बेटा आपने क्या पढ़ा, क्या हुआ, नमाज़ पढ़ी नहीं पढ़ी, इस पर गुफ्तगू नहीं करते, आकर भी वो मोबाइल में गुम हो जाते हैं, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इधर उधर लगे रहते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे जो है ना वालदेन से करीब नहीं होते बल्कि वो भी दूर हो जाते हैं, फिर घर में अगर 4-5 मोबाइल है सारे मोबाइल पे लगे रहते हैं, वालदेन अगर अपने बच्चों को टाइम दें तो इंशाल्लाह घर में भी एक माहौल बनेगा, बच्चों को भी पता होगा कि वालिद साहब इस वक्त हमारे साथ बैठेंगे, गुफ्तगू करेंगे, पूछेंगे कि स्कूल का होमवर्क किया है, मदरसे का, अगर बच्चा मदरसे में पढ़ रहा है तो उसका आपने सबक याद किया है, अगर बच्चा कॉलेज पढ़ रहा है तो उसके वाले से पूछ लिया, फिर नमाजें जो होगी 5 नमाजें की आपने पढ़ी हैं तो कुछ ना कुछ कुरान पाक के वाले से कुरान की तिलावत की है नहीं की, तो इस तरह अगर करेंगे तो घर में माहौल भी बनेगा और बच्चों को भी कुछ ना कुछ टाइम मिलेगा, बच्चों के साथ भी मुस्कुराकर अच्छे अंदाज में वक्त देंगे तो इंशाल्लाह इसका फायदा होगा।
हुकूक उल इबाद का बड़ा ख्याल किया जाता था, बस में खड़े तो देख के बुजुर्ग खड़े फोन उड़ जाते थे
और उस वक्त हम भी हो जाते थे, आज हमको देख के बच्चे होते हैं लेकिन चार नहीं,
तरबियत उन्होंने की होती है बच्चों की,
ब्लड अच्छा है तो तरबियत अच्छी करी ना उन्होंने, आज हम सोच नहीं रहे कि हम क्या कर रहे हैं, मैं इन बच्चों से कहता हूँ कि देखो बेटा ये टाइम तो गुजर जाता है गुजर जाएगा,
ठीक है
हमारे ऊपर भी आया है, आज हम एक दूसरे का ख्याल नहीं कर रहे हैं, मोहब्बत नहीं कर रहे हैं, खुलूस नहीं दिखा रहे, तो वो तो अमल आएंगे ऐसे, परेशानी तो ऐसी आएगी।
अगर सिर्फ फर्ज किसी की हक गलती हमसे हो जाए तो उसका अदालत कैसे किया जाए?
लेकिन अदालत का जहाँ तक ताल्लुक है उससे बाकायदा माफी तलाफी की जाए,
ये मुश्किल काम है।
मुश्किल काम तो सामने आता है, वही तो लेके जाता है हमको आगे। मुश्किल काम हम करेंगे तो बच्चों को नसीहत होगी कि ये काम इन्होंने करा, हम करते नहीं यार, हम भी करते हैं। नसीहत मिल जाएगी बच्चों को।
सही फरमा रहे।
आज हमारे बच्चे जो है ना सिर्फ मोहब्बत और खुलूस के भूखे हैं।
लगने वाले रखते हैं हर हाल में, चार रोटियां होती हैं दो खाते गुजारा करते हैं, हक लिबास देते हैं, पड़ोसी का ख्याल करते हैं, हर एक का ख्याल करते हैं। ना ख्याल करने वाले करोड़पति हैं, पड़ोस नहीं पता मौत आ गई, जिंदगी है क्या है उसको भी नहीं देखते। यह आपका और हमारे हमारे आपके जो दौर की कमियां है ना जो हमने निभाया नहीं वो आगे आ रहा है हमारे।
अल्लाह ये इसको
हम किसी को इल्जाम नहीं देंगे, हम इसको यूँ कहेंगे सारी गलतियां हम बुजुर्गों की है।
अल्लाह ये इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा वजाहत के साथ कि ये जो कोताहियां कमियां हमारी हैं वो हमारे आगे आ रही हैं।
भाई पांच बार नमाज होती है, जो नमाज मस्जिद के करीब हो वहाँ नमाज पढ़ो, मोहल्ले वालों से मिलते हैं, जुम्मे में जाते हैं ज्यादा इज्तम से मिलते हैं, लोगों की नजरों में आते हैं, लोग आपको देखते हैं, कोई आपको लंगड़ा के चलना खैरियत पूछते हैं।
अल्लाह अल्लाह दूसरे नमाज में नहीं आए थे क्या वजह?
ये वजह होती है
जी मजी चैनल के नाजी वाकई इन्होंने बहुत प्यारी बात अर्शाद फरमाई कि ये कोताही हमारी है। जैसे हमने बच्चों को तैयार किया ऐसे हमें उनका रिस्पॉन्स मिल रहा है। हकीकत में अगर हमने बच्चों को सही वक्त दिया होता तो आज वक्त के साथ साथ बच्चे भी हमारा अदब करते, ना सिर्फ हमारा बल्कि मोहल्ले के अंदर जितने भी बुजुर्ग हैं उनका भी अदब करते। डरते थे लोग, हकीकत है ये। हकूक लिबास का एक तकाजा ये भी है कि हम अपने हकूक जो बच्चों के ऊपर हैं, बीवी के हकूक हैं, अगर वो पूरे करने में कामयाब हो गए तो हम एक बेहतरीन मुआशरे की बुनियाद रखने में कामयाब हो जाएंगे।
मेरा नाम मोहम्मद अकबर है और मेरी उम्र 60 साल है।
मेरा नाम खालिद मंसूर है और तकरीबन 62 साल उम्र है।
माशाल्लाह अल्लाह पाक सेहत और आफियत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए।
आमीन। देखिए बात दरअसल ये है, हुकूकुल इबाद जो है ना एक बड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, ये एक छोटी बात नहीं है और सबसे ज़्यादा इंसान की ज़ात पे उसका अपना है। अगर वो अपने लिए अच्छा सोचे तो वो दूसरे के लिए भी अच्छा सोचेगा, और सबसे ज़्यादा कुल इबाद के लिए उसका जो नियरेस्ट पड़ोसी है ना वो उसका हकदार है। और माँ बाप, औलाद,
बहन भाई
बीवी, ये सबसे नज़दीक तरीन है।
जी जी।
उसके बाद जो है वो फिर आगे चलता चला जाता है।
ये बताइए कि उसकी जमाना कहते हैं कि हालात जो है बहुत मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, रिश्तेदारियों निभाना, दोस्तियाँ, पड़ोस का ख्याल करना ये मुश्किल होता चला जा रहा है, हकूकुल बात का ख्याल इस महंगाई के दौर में कैसे रख सकता है बंदा?
महंगाई इतनी हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है कि अगर ये दो मेहमान घर में आ जाए ना तो 300-400 चला जाता है, और कारोबार है नहीं, लोगों के पास पैसे नहीं है। भाई घर पे आ जाए तो वो भी सोचता है कि यार भाई के घर पे मैं कैसे जाऊं,
नफ्सा नफ्सी के दौर चल रहे, इस टाइम सारे दौलत के पीछे भाग रहे हैं। हराम होए हलाल होए कुछ भी होए
आनी चाहिए
बस, नोट आना चाहिए, इस टाइम सारे सब उसी में लगे हुए हैं।
पहले की तो बातें कुछ और थी, अब नहीं है वो कहानी। आजकल बाप बेटा को नहीं पहचानता, समझे? महंगाई इतनी हो गई है कि हद से ज्यादा उसका कोई ये अब 10 रुपए वाली चीज जो है 100 रुपए की मिल रही है आजकल के दौर में।
पहले के दौर में बड़ा एहतराम होता था, बच्चे बड़ों का एहतराम करते थे, अदब से बात करते थे। आजकल तो ये हो गया है कि बिल्कुल तू थोड़ा से बात होती है, अगर कोई बड़े किसी कोई बात करे तो वो भी बड़ा सोच समझ के करता है कि आगे से जवाब गलत नहीं मिल जाए। तो पहले का दौर बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। अभी थोड़ी सी जो है कि दावत इस्लामी वालों की जो तालीम हो रही है और ख़ासकर नौजवान तबका जो है बड़ी अच्छे उसमें आ रहे हैं।
बस ये महंगाई की वजह से ऐसा बन गया ना,
यानी ये कह सकते हैं कि महंगाई की वजह से रिश्ते भी दूर होते जा रहे हैं।
अपनी अपनी पड़ी हुई है सबको, किसी का एहसास कोई करने वाला है ही नहीं।
अब आगे रिश्तेदारी में जाते भी सोचता है यार कहीं 500 रुपये खर्च होंगे, 500 रुपये में मैं अपने बच्चों के लिए कुछ खिला लूँ,
और 500 रुपए जाने आने में खर्च हो जाएंगे और मैं देकर क्या आऊंगा, लेकर क्या जाऊंगा।
बिल्कुल, आजकल तो मेहमान को देखते बंदे जो दूसरी गली पकड़ लेते हैं यार मेहमान आ गया, हालांकि मेहमान
अल्लाह की
रहमत होती है।
तो किसी के यहाँ जाने से इसलिए रुक जाता है कि मैं जाऊंगा तो क्या दे के आऊंगा
और हो सकता है उसके पास भी है या नहीं है,
چائے کے بھی پیسے بھی ہیں یا نہیں جو حالات چل رہے ہیں؟
تو اس میں رشتہ داریوں میں دوریاں پیدا نہیں؟
جی جی دوریاں تو پیدا ہوں گی اسی وجہ سے تو ہوں گی. کچھ ہماری بھی کوتاہیاں ہیں. ہم 25-25-30 ہزار کے موبائل لے لیتے ہیں. ہم بھائی ہیں بہنیں ان کو حقوق نہیں دیتے. 50-50 ہزار کا موبائل لے رہے ہیں. اب بہن ہے اس کے گھر میں کوئی چیز بھی نہیں ہے. ہم 2000 روپے کا راشن نہیں ڈلوا سکتے.
حقوق بات کی ادائیگی میں بزرگ بھی تو کہیں نہ کہیں کوتاہی کر جاتے ہیں. اب چلتی کسی نہ کسی جگہ ہو جاتی ہے.
یہ دور ایسا چل رہا ہے تو کوتاہی تو ہوتی ہے, لیکن یہ کوشش کرو جیسے آپ کی طاقت ہے اس حساب سے مہمانے سے ڈرو مت. اس کو کھلاؤ اس کو پلاؤ, اللہ پاک آپ کو اور دے گا.
آج کل ہر انسان کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے اور کوئی کسی دوسرے کا نہیں سوچتا. حالانکہ دوسرے کا پہلے سوچنا چاہیے, آپ کو بعد میں اپنا سوچیں.
پہلے غمی ہوتی تھی یا خوشی ہوتی تھی, جن کے گھر میں ہوتی تھی ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا. پڑوس والے بھی ہیلپ کر دیتے تھے, رشتے دار بھی ایک دوسرے کی مدد کر دیتے تھے.
بالکل صحیح فرما رہے ہیں.
یہ
آج کل وہ چیز نہیں ہے.
اس کی وجہ کیا ہو سکتی
ہے؟ اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ مہنگائی بھی ہے, بہت زیادہ مہنگائی ہے. تو ایک دوسرے کو جو ہے نا بس وہ کاٹ پیٹ میں لگے ہوئے ہیں اور وہ غیبت بہت ہو گئی ہے, جلن بہت ہو گئی ہے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے.
حضرت عرض یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے بہترین دور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, اور جتنا جتنا وقت گزرتا جائے گا فتنے فساد افراتفری وہ پھیل دی. اب ہم 1450 سال آگے آ گئے, تو اس میں تو یہ جو ہے نا فتنہ یعنی کہ خود غرضی کا یہ بھی ایک فتنہ ہے, تو وہ عروج پہ ہے. تو اب ظاہر ہے ہر آدمی اپنے اس میں ہے کہ بھائی میرا کام ہو جائے دوسرا کو چھوڑو رہنے دو. شادی بیاہ میں بھی یہی ہوتا ہے, بیچارہ ایک آدمی لگا ہوتا ہے باقی جو ہے اس کے رشتے دار آ کے کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں.
اچھا ایسا بھی آپ نے دیکھا ہے کہ بزرگوں سے بھی کہیں نہ کہیں فرض کی ادائیگی میں کوتاہی ہو جاتی ہے جس سے رشتے داروں میں آپس میں پھوٹ پڑ جاتی ہے, جیسے وراثت کے معاملات ہوتے ہیں اس کو جب تقسیم کرتے ہیں تو کہیں وہ کوتاہی کر جاتے ہیں, کہیں ایسا بھی دیکھا ہے آپ؟
ایسی بھی ہے, ایسا بھی ہے. سب انسان وہی دولت کے چکر میں بس میں خوش رہا ہوں, سب اپنے چکر میں لگے ہوئے ہیں.
میں نے ایک بزرگ کو دیکھا, وہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں اس عمر میں 70 سے زیادہ تھی کہ اگر کما کے گھر نہیں لے کے جاؤں گا تو گھر والے میری روٹی بھی نہیں دیں گے, اب میں دیتا ہوں تو سر میری عزت بھی کرتے.
جی ہاں یہ بات سچ ہے, کما کے لے کے جاؤ تو عزت ہے, میں لے کے جاؤ تو عزت نہیں.
سستائی ہوتی تھی, ہر چیز انسان کو سمجھ میں آتی تھی. 500 میں مطلب پوری آنڈی بھی پکٹ آتی تھی, بچے سب کھا لیتے. ابھی 1500 میں بھی نہیں چلتا ہے گھر.
اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے, اس لیے اپنی باغ دوڑ کر رہے ہیں کہ میں اپنا رزق پورا کر لوں. بس یہی سسٹم ہے.
اسی وجہ سے رشتے داروں میں ایک دوسرے کا احساس
ختم ہوتا جا رہا ہے.
تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
کل بات ادا کرنے میں نہ ہمیں کالی اور سستی نہیں کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے کہ کل بات ادا کریں.
اگر کسی کی حق تبدیل ہو جائے کسی بزرگ سے, اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟
اللہ بس حق تلفی, اس کے حق ادا کر دیں
یا اس سے معافی,
یا اس سے معذرت کر لیں, معافی مانگ لیں.
وہ تو آج کل تو بچوں کو تو بلاؤ تو اون کر کے بولتے ہیں. ہم لوگ وقتوں کے اندر بچوں کو بلاؤ تو جی کر کے بولتے تھے.
اب تو آدمی کہتا ہے کہ 1 گھنٹے پہلے چلے جاؤ. کس ٹائم ہے بھائی نوازی جی؟ اس ٹائم پہ. اچھا جی ہم پہنچ جائیں گے.
وہ قبرستان میں ڈائریکٹ پہنچ.
ہاں بس یہ چکر ہے. کیوں کس وجہ سے؟ خالی مہنگائی کی وجہ سے. بیوی بچوں کا پالنا ہے. اگر ہم ایک ایک ہفتے وہاں پر رہیں گے جو جن کا انتقال ہوا ہے ان کے گھر کا کیا ہوگا؟
آپ مدی چین کے ناظرین کو کوئی پیغام دیں.
اپنے بچوں کو نماز میں ساتھ لینے کی کوشش کرو, اپنے دوستوں سے ملواؤ بچوں کو, کوئی معاملے ہیں کاروباری لینے دینے ان کی کان آواز ڈالتے رہو, کسی کا دینا ہے وہ بتاتے رہو ان کو, کسی سے لینا ہے وہ بتاتے رہو, ہر معاملے میں ان کو ساتھ رکھو پارٹنر بنا کے
بچوں
کو, تو انشاءاللہ وہ آپ کے آگے بہت کام آئیں گے.
جی ہاں مدی چین کے ناظرین, یقیناً جو انسان حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی اخلاص کے ساتھ کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوتا ہے. مگر آج کل کے دور میں حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کی ادائیگی میں غفلت بڑھتی جا رہی ہے, جس کا نتیجہ ہم سب کے سامنے ہے کہ امن و سکون اڑ چکا, بد امنی اور بے چینی عام ہوتی جا رہی ہے. مسلمان پر ماں باپ بہن بھائیوں بیوی بچوں رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق ہیں, कि इन सब के साथ नेक सलूक करें, कि अगर इन सब के हकूक अदा नहीं करेगा तो क़यामत के रोज़ अज़ाब जहन्नम में गिरफ्तार होगा। हमारा ये हदफ होना चाहिए कि हम हकूक उल इबाद का ख्याल करेंगे, और अगर किसी का हक तल्फ हो गया हो तो उनका हक भी अदा करेंगे और उनसे मुआफ़ी भी मांगेंगे। इन सब अहकाम पर अमल करना इंतहाई ज़रूरी है। हकूक उल इबाद की अदायगी के बगैर दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। मज़ीद जिनके नाज़रीन प्रोग्राम फुर्सत के लम्हात में हकूक उल इबाद की अदायगी, इसको लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। आज के प्रोग्राम में बेशुमार लोगों से हमारा वास्ता पड़ा और उनसे हमारी गुफ्तगू हुई हकूक उल इबाद के हवाले से, और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि इस वक्त मैं ऐसे इस्लाम भाई के साथ मौजूद हूँ जिनका एक तवील अरसा जो है अमीरे सुन्नत की सोबत में गुजरा। मेरे लिए सादत की बात है कि मैं इनसे मालूम करूँ कि अमीरे सुन्नत के बारे में ये क्या जानते हैं। पहले तो इनका तारुफ आपके सामने पेश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।
वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
हजूर, आपसे अर्ज़ ये है कि आपको दावत इस्लामी के अवाल से ही ये सादत हासिल है कि आप इस दीनी माहौल से वाबस्ता हुए और एक तवील दुरानिया अमीरे सुन्नत की सोहबत की बरकतें आपने हासिल की, और वो सिलसिला भी जारी है। अल्लाह पाक आखिरी सांस तक इस सिलसिले को कायम और दायम रखे। अर्ज़ आपसे ये करनी है हकूक लिबाद के हवाले से, अमीरे सुन्नत की जो अपनी सोच और अपनी एहतियातें हैं उसके बारे में अगर आपको कोई वाक़या याद हो तो आप ज़रूर इर्शाद फरमाइएगा, ताकि हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन जो हैं इससे मुस्तफ़िद भी हो सकें और ये अपना जहन बनाएं कि किस तरह हकूक उल इबाद की अदायगी जो है करनी चाहिए।
अल्हम्दुलिल्लाह, अमीर अहले सुन्नत की सोहबत में काफ़ी अर्सा रहे हैं और अब भी हैं। सिक्योरिटी के मामला के लिहाज से थोड़ा दूर हैं लेकिन करीब ही हैं, और साथ ही साथ अवाइल 1981 से अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत के साथ हैं और साथ ही रहें। कई बार सफ़र में साथ रहे, अमीर अहले सुन्नत के साथ मदीन का काफिला गया था उसमें भी साथ थे। हर मौके पर मैंने अमीर अहले सुन्नत को ये देखा कि आपके अंदर हुकूक उल इबाद के बारे में जो आपकी हसासियत है ना, वो मैंने किसी और में नहीं पाई।
अल्लाह
माशाल्लाह, आप इस कदर इस बारे में हसास हैं कि ज़रा सी भी आप महसूस करते हैं कि यहाँ हुकूक उल इबाद का मामला है तो आप फौरन सामने वाले से माफ़ी मांगते हैं और उसके आगे हाथ जोड़ लेते हैं और उसको मतलब मनाने और राजी करने की और माफ़ी लेने की कोशिश करते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह, इसी तरह का रमजान का इतकाफ,
अल्हम्दुलिल्लाह रमजान के इतकाफ में भी कई बार साथ रहे, दो बार साथ इतकाफ करने का मौका भी मिला, मदीने का सफ़र भी साथ रहा, तो हर जगह मैंने देखा मेरे पीर की अमीर अहले सुन्नत की एहतियातें, खासकर हुकूक उल इबाद के बारे में जो आपकी एहतियातें ना, उसकी मैंने कोई और नज़ीर नहीं देखी। और बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला कि वाकई हुकूक उल इबाद होता क्या है। इस तरह हुकूक उल इबाद के तो बहुत सारे वाक़ात आंखों के सामने से गुजरे। मैं इस वक्त आपके सामने एक ऐसा वाक्य बयान करता हूँ जिसको सुनकर आपको भी हैरत होगी कि अमीर अहले सुन्नत के अंदर कितनी हसासियत थी। एक दफ़ा का जिक्र है कि हमारे मरकजी मजलिस शूरा के साबिक निगरान मरहूम नाजी मुश्ताक अत्तारी के सामने कि कोई पेन का जिक्र था, माजरत करनी थी या किसी से लिखने के लिए लिया पेन और शायद रह गया या भूल गए, उन्हें उससे माजरत की, तो ये जिक्र हाजी मुश्ताक अली रहमान के सामने हुआ। जब हाजी मुश्ताक अली रहमान ने ये सुना तो आपने अपने जेब से एक रुका निकाला, उस रुके में अमीर अहले सुन्नत ने हाजी मुश्ताक को रुका दिया था जिसमें लिखा था कि मैं आपके इलाके में 11वीं शरीफ की महफिल में हाजिर हुआ था, जिस दरी के ऊपर मैं बैठा हुआ था उस दरी का एक धागा मुझसे टूट गया था और ये दरी यकीनन डेकोरेशन वाले की थी, तो मुझे उससे माफ़ी मांगनी है, तो आप मेरी तरफ से जाकर उनसे माफ़ी मांग लें, ये धागा मुझसे टूट गया था, अगर वो माफ़ करने को तैयार नहीं होता तो मुझे हुक्म देना, मैं माफ़ी के लिए हाजिर हो जाऊंगा और मुझे इस बारे में जितना जल्द हो मुतमईन करना कि क्या हुआ, उसने माफ़ किया या नहीं किया, वरना मैं हाजिर हो जाऊंगा। ये अमीर अहले सुन्नत की एहतियात थी और हकीकत में ये खौफ खुदाई है कि जो हुकूक के बाद में इस कदर आप मोहताज थे। अल्लाह ताला इनके सबके हम सब की बेहसा मगफरत फरमाए।
मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक अपने हकूक माफ़ कर देगा। बंदे के हकूक उस वक्त तक माफ़ नहीं होंगे जब तक वो बंदा खुद माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह पाक हम सबको हकूक उल इबाद की अदायगी की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अल अमीन। صلی اللہ علیہ وسلم.
فرصت کے لمحات ہیں نعمت خدا کی جان لو, کر لو ان میں نیکیاں جنت کا یوں سامان لو.